तेजस्वितुं ओजस्वितुं तेजस्वितुं प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम, यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। प्रखर तेज हो तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो, श्वासों में प्राण हो अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो, तुम महावीर हो वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो, तुम क्रांति वीर हो, तुम कर्म वीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो, ओजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम।
ओम शांति। एक शिकारी एक पक्षी को पकड़ता है, पर पक्षी बहुत बूढ़ा है और वो पक्षी उस शिकारी से कहता है, मुझे पकड़ के तुम्हें कोई फायदा नहीं है, ना मैं दिखने में सुंदर हूं, मेरा कोई मोल तुम्हें नहीं मिलेगा, ना ही मेरी आवाज मधुर है, मुझे पकड़ के क्या फायदा, मुझे छोड़ दो। शिकारी कुछ नहीं कहता है, वो चल रहा है पकड़कर। पक्षी फिर कहता है कि मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जीवन के 3 सूत्र बताऊंगा। शिकारी कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुमने नहीं बताए तो गारंटी। पक्षी कहता है तो ठीक है, जब तुम मुझे पकड़े हो और जब मैं तुम्हारे हाथ में हूं तभी मैं तुम्हें 1 सूत्र बताता हूं, अगर तुम्हें पसंद आया तो छोड़ देना, मैं जब झाड़ पर बैठूंगा डाली पर तब 2 सूत्र बताऊंगा और जब उड़ने लगूंगा तब 3। शिकारी को सौदा पसंद आता है, बताओ। पक्षी कहता है जो बीत गया सो बीत गया। जो व्यक्ति बीते का चिंतन करता है, बीती हुई बातों का चिंतन करता है, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, और जो बीते को विसारता है वो अपने आप आगे बढ़ जाता है। बात सटीक थी, शिकारी को पसंद आई, सत्य था। पक्षी को छोड़ देता है। पक्षी डाली पर जाकर बैठता है और कहता है जीवन में कभी भी ऐसी बातों पर विश्वास ना करना जो तर्क संगत नहीं हो। जब तुम्हारी बुद्धि कहती है कि यह बात गलत है, उसे गलत कहना और उसका त्याग कर देना, उसे पकड़ के मत रहना। नाप तोल कर चीजों को स्वीकार करना। कोई कुछ भी आके कह दे, कोई कहीं से कुछ पढ़ लो, उसे मानना नहीं। शिकारी को बात पसंद आती है। और पक्षी फिर उड़ने लगता है और शिकारी पूछता है 3री बात। पक्षी कहता है 3री बात बताने से पहले तो मैं एक बीच की बात बताता हूं, और वो ये कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैं भले बूढ़ा हूं और मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं, मेरी आवाज भी कर्कश है, परंतु मेरे पेट में 2 हीरे हैं। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते और तुम मुझे मार देते और काटते तो तुम्हें 2 हीरे मिल जाते। शिकारी उसकी ये बात सुनकर दुखी हो जाता है। फिर कहता है 3री बात तो बता दो। वो कहता है 3री बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जबकि तुमने 1ली और 2री बात पर अमल ही नहीं किया। मैंने तुम्हें 1ली बात बताई थी, जो हो गया सो हो गया, पक्षी हाथ से छूट गया सो छूट गया, अब क्यों दुखी हो रहे हो? फिर भी तुम दुखी हुए। जो बीत गया था, जो छूट गया था, उसके बारे में सोचने लगे। और मैंने तुम्हें 2री बात कही थी कि कोई भी तर्कसंगत बात ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना, और तुमने इतने जल्दी विश्वास कर लिया जब मैंने तुमसे ये कहा कि मेरे पेट में हीरे है। क्या पक्षी के पेट में भी हीरे होते हैं? मूर्ख, तुम 3री बात सुनने के योग्य ही नहीं हो, इसलिए मैं तो चला। जब तक तुमने 1ली और 2री बात नहीं सुनी और जीवन में लाई, जब तक तुमने 1ला सूत्र और 2रा सूत्र नहीं समझा, 3रा सूत्र समझने के तुम लायक ही नहीं हो। चैप्टर 1 त्याग का 1ला चैप्टर, देहभान का त्याग। जब ये छोड़ोगे तब 2री पॉइंट समझ में आएगी। चैप्टर 2 देह की जो कर्मेंद्रिया है, उनकी जो गुलामी है, उस गुलामी का त्याग। दास के 9 लक्षण थे विट्ठल भाई, कौन से? पूरे के पूरे 9। दास अर्थात जो उदास है, दार अर्थात जो सदा अपसेट है, दास अर्थात जो कंफ्यूज्ड है, हर सेकंड में कंफ्यूज्ड है, दास अर्थात जो शान से परेशान है। दास अर्थात अपने आप को परिस्थितियों के मझधार में अनुभव करता है। दास अर्थात कर्मलीला करने वाला। बिल्ली, चूहा, शेर, कुत्ता। दास अर्थात जो तख्त से नीचे खिसक गए हैं। दास अर्थात जो अर्जियां डालते रहते हैं। और नौवा, जादू का जाल। एक एक इंद्रिय क्या है? मकड़ी का जाल है। विधि क्या है? इस जाल को ही खा लो, बिंदी बन जाओ, बिंदी में समा जाओ, मास्टर बीज रूप। तो चैप्टर वन भाग्य और त्याग और भाग्य। चैप्टर टू दूसरी मुरली, देहभान का त्याग। उसमें हमने देखा था मुरली में क्या क्या विधियां थी देहभान के त्याग की। दीपाली बहन, 10 बातें बताओ, और उसमें से एक बात जो थी विस्मृति, उसमें और 10 बातें थी। सबसे पहला, देह के ऊपर अधिकार, देह की अधीनता। देह को क्या समझो? देह में अपने आप को क्या समझो? मेहमान। देह तुम्हारा, तन तेरा। तन किसका? तेरा। जैसे ब्रह्मा के लिए है कि बाबा, शिव बाबा का रथ, वैसे तुम भी समझो ये बाबा का रथ है। मेहमान, अमानत, विस्मृति, किनारा करना, और पूरे मर जाओ। और विस्मृति में हमने ढेर सारी बातें देखी थी, मल्टीपल पॉइंट्स। कल की मुरली, त्याग किसका? संबंध में 2 बातें, एक लगाओ और एक झुकाओ, घृणा। घृणा में बहुत सारी बातें थी। कौन सी बातें थी मंजूबेन? घृणा का त्याग, उसमें क्या क्या था? बीज, उसमें क्या क्या था? कल सबसे पहले क्या था? मोह का त्याग। कितनी बातें थी? 7-8 बातें थी। कौन सी सबसे फर्स्ट? बुद्धि विचलित करती है। जिस व्यक्ति से घृणा है वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करता, उसके कर्म हमारे मन पसंद नहीं होते हैं, तो वो बुद्धि को क्या करता है? विचलित करता है। फिर उल्टा चिंतन चलता है, विरोधी चिंतन चलता है, उल्टा चिंतन चलता है। और याद करते हैं बाप को, याद आता है वो। थर्ड, फोर्थ, स्वार्थ। क्या हो जाता है? स्वार्थ, स्वार्थ आ जाता है। अगला, वेस्टफुल, व्यर्थ। अगला, तंग हो जाते हैं। अगला, शक्ति, बुद्धि, समय, सब कुछ चला जाता है उसके चिंतन में। और मोह के लिए क्या कहा था? 5 बातें थी अरविंद भाई, 5 बातें, कर्म बंधनी आत्मा के लक्षण। सबसे पहला, संबंध का अनुभव नहीं होगा बाबा से। दूसरा, याद की यात्रा में सब्जेक्ट में कमजोर। तीसरा, सेंस या एसेंस, एसेंसफुल, स्पीकर बन सकता है, वक्ता बन सकता है, पर अनुभव 0। चौथा, विघ्न विनाशक नहीं होगा। और 5वां, विधि पूर्वक वृद्धि नहीं कर पाएगा। आज की अव्यक्तवाणी, त्याग का और एक सोपान, त्याग की एक नई सीढ़ी, त्याग की एक नई परिभाषा, नया चैप्टर। किसका त्याग करो? व्यर्थ। वैसे तो 5 चीजों का त्याग करना है। मुरली में आया है विकर्म। तुम कौन से सन्यासी हो? विक्रमाजीत विकर्म सन्यासी हो। पहला विकर्म, दूसरा व्यर्थ निगेटिव, और एक चीज की त्याग करने को बोला, ऑर्डिनरी जो साधारण है उसको भी त्यागो, उसको भी छोड़ दो। ये चार चीज आए हैं, आई है मुरली में, व्यर्थ निगेटिव साधारण विकर्म। एक और शब्द है भाषा में कुकर्म। अच्छा वो दूसरी पॉइंट है, चालू भाषा, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे ही नहीं हीरे जैसे, क्योंकि तुम कौन हो, हीरो पाटधारी, हीरो हीरोइन हो इस विश्व मंच पर, हर संकल्प हर बोल हर कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ। कौन सी आत्मा हो तुम, एक मुरली में नया शब्द आया है जो पहले थोड़ा कम आया है, नया शब्द, कौन सी आत्मा, नया है एकदम, कौन सा, सुकर्मा आत्मा, कौन सी आत्मा हो, सुकर्मा। भगवान के हाथ में जो चाहे वो बना सकता है, सुकर्मा आत्मा हो तुम। तो विकर्म तो हमने मुरलियों में शब्द बहुत सुना है, पर अखबारों में एक शब्द आता है कुकर्म, वो क्या है और दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे डिफरेंस है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या लिखा है, इंटेंट अवेयरनेस एग्जाम्पल, क्या लिखा है, उसका परिणाम इम्पैक्ट, अध्यात्म में उसका क्या असर है, तो दोनों में बहुत अंतर है, बहुत क्या, बहुत ज्यादा अंतर है। विकर्म अर्थात पाप कर्म, विकर्म अर्थात वो कर्म जो विकारों के वशीभूत होकर किए जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो सारे कर्म जो श्रीमत के खिलाफ है वो सारे। परंतु विकर्म अर्थात वो कर्म जो आत्मा आत्मा परवश है, आत्मा कमजोर है, आत्मा स्मृति में नहीं है, इतनी स्मृति स्वरूप नहीं है, उसे याद नहीं है, वो करते समय भूख लगी, बाहर दिखा कुछ है और खा लिया, और खाने के बाद याद आया, अरे मुझे तो बाहर का नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि उस समय वशीभूत है, उस समय कमजोर है, उस समय स्मृति की अवस्था इतनी ऊंची नहीं है, कई दिन हो गए मुरलियां नहीं पड़ी है, अमृत वेला तो याद ही नहीं कब किया था, क्योंकि उठने का समय ही 8 बजे है, आते हैं हमारे पास ब्राह्मण आत्मा है, ऐसा बताते हैं, 11 बजे उठते हैं, कोई 10 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई उठते तो है परंतु ऐसे ही, बहुत वैरायटीज है। तो विकर्म हो रहे, किसी की निंदा कर दी, किसी की ग्लानी कर दी, कटाक्ष कर लिया, कुछ ना कुछ कर रहे, अमृत वेला नहीं किया, सो गए, फिर नींद आई, आलस अवज्ञा है, झूठ बोल देते, कुछ भी कर लेते, पर अवेयरनेस थोड़ी कम है, ये सब विकर्म है, विस्मृति की अवस्था में हो रहा है सब कुछ, उन्हें पता नहीं बोले है, ये सारे विकर्म की कैटेगरी है। तो विकर्म की ये परिभाषा, इंटेंशन उनको पता ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है, उदाहरण ये सारे, कॉन्सिक्वेंसेस आत्मा की जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं होगी, अध्यात्म में ठहराव आ जाएगा, ये है सारे विकर्म। फिर कुकर्म क्या है, कुकर्म अर्थात जान बूझ कर पाप करना, कुकर्म अर्थात संपूर्ण स्मृति है, अवेयरनेस है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और लक्ष्य है सामने वाले को दुखी करना, ठगना, फंसाना, हर्ट करना, आहत करना, अपने शब्दों से इंटेंशन इतना इविल है कि पता है मैं ये कहूंगा उसको दुख पहुंचाऊ, ये ही लक्ष्य है, ये जो है विकर्म उसमें लक्ष्य नहीं है, इस तरह का इंटेंशन उसमें पता ही नहीं व्यक्ति को, चार लोगों ने किसी एक व्यक्ति के बारे में गलत बोला है तो हम भी उनके साथ ज्वाइन कर लेते, हम भी बोलने लगते। फिर जब रियलाइज होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो वहां पश्चाताप होता है, ये है विकर्म। पर कुकर्म एक अलग ही चीज है। कुकर्म अर्थात जहां पहले ही पता है वो व्यक्ति राइट है, पर अंदर जेलसी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले का भाव है, उसका बदला लेना है, उसको गिराना है, उसको मारना है, कुछ भी करके उसके प्रति नफरत फैलानी है, जहर फैलाना है। ये जो कार्य है इसे कहा जाता है कुकर्म, और ये रैपिड डिक्लाइन करता है स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअलिटी में अधपतन की ओर ले जाता है, बहुत फास्ट विकर्म विनाश होता है। जो भी पुण्य कर्म किए, कोई आत्मा होगी 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से ज्ञान में चल रही है, परंतु हर दिन कुकर्म हो रहे हैं, तो जो जो पुण्य किया है वो बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है, बहुत तेजी से, उसे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि लक्ष्य ही, मंशा जो है वो अशुद्ध है, मंशा में नफरत है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कुकर्म, बहुत ऊंची बड़ी चीज। तो इस मुरली में बाबा ने क्या है, विकर्म अर्थात क्या, तीन बातें बताई विकर्म की। कुकर्म की तो चर्चा ही नहीं, कुकर्म अर्थात क्रिमिनल असॉल्ट, जबरन, जबरदस्ती, नाजायज तरीके से, इल्लीगल तरीके से, फुल अवेयरनेस के साथ, जो डाकू है, लूटने वाला है, उसको पता है वो क्या कर रहा है। ऐसा नहीं कि भाई मैं जा रहा था, चीज रखी थी, मुझे क्या पता कि इसके ले लिया, विकर्म। बाद में पता चला अरे मेरी नहीं है तो वापस कर दी, पर विकर्म तो हुआ। पर ये पता है ये पेन इसका है और वो नहीं है, और कंफर्म किया कि वो नहीं है, फुल इंटेंशन, फुल अवेयरनेस, फुल इंटेंशन, फुल अवेयरनेस के साथ जो किया जाता है उसे कहते हैं कुकर्म। और अवेयरनेस और इंटेंशन ये है तो वो है विकर्म। विकर्म की परिभाषा मुरली में दी है, एक रॉयल, सूक्ष्म और अंश भी नहीं विकार का। ये तो बाबा केवल विकारों की, विकर्म तुम्हारे सिर पर 63 जन्मों के विकर्म है, कुकर्म तो असॉल्ट, भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार करता है ना, ऑफिसर है वो रिश्वत लेता है तो क्या, अरे मुझे पता ही नहीं था ऐसे रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ऐसे होता है? उसे फुल पता है, कंप्लीट अवेयरनेस है, उसके साथ वो करता है और उसके लिए वो आदत बन गई है। वो विकर्म छोटे छोटे होते हैं, विकर्म थोड़ा छोटा है, बाकी इनसे तो कंपैरिजन में निगेटिव और व्यर्थ से ऊंचा है। विकर्म, पहले कुकर्म, फिर विकर्म, फिर निगेटिव, फिर व्यर्थ और फिर साधारण। इस मुरली में तो कहा यह साधारण भी छोड़ो, बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, इनको समझने में कितना टाइम लगता है 70 दिन का कोर्स है या 7 दिन का या 70 साल का, 70 साल भी कम है। एक ही मुरली को लो और एकांत में जाके अध्ययन करो, ऐसे भूल जाओ कि इसके पहले भी कुछ पढ़ा था। सोचो यही एक नया, नए रीति से, हो सकता है उसी मुरली पर 10 बार तुमने ही क्लास कराए है, लोगों को समझाया है, सब एक तरफ, नए रीति से, नए सिरे से फिर से पढ़ो। अच्छा ऐसा है, ओहो तो इन दोनों को समझना है कि सारे दिन भर हमसे क्या हो रहा है। ऊंचे कर्म, श्रेष्ठ कर्म हो रहे, सुकर्म हो रहे, विकर्म हो रहे, व्यर्थ कर्म हो रहे, निगेटिव कर्म हो रहे, साधारण कर्म हो रहे या कुकर्म हो रहे। साधारण व्यर्थ की बात है, इधर उधर की बातें, गपशप, या फिर ऐसे ही एक शिकारी कहता है, अभी कल की ही बात है, मैं बैठा था और सामने से शेर आ गया। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, बंदूक ना कुछ, बकेट थी पानी की, उठाई और सीधा डाल दी उसके ऊपर, भाग के चला गया। दूसरा शिकारी कहता है, हाँ हाँ जब मेरे पास आया और मैंने हाथ सहलाया तो गीला गीला था, क्योंकि मैं वही था ना आगे। एक फेंक रहा है तो दूसरा भी, अभी इससे आत्मा का पतन तो नहीं हो रहा है, आत्मा की दुर्गति नहीं हो रही है इससे, पर क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। एक है कि आत्मा इसमें विकर्म में तो चलो रुक जाती है प्रगति, पर ये जो दूसरे है व्यर्थ नेगेटिव, नेगेटिव में भी बहुत फास्ट पतन होता है, पर जो व्यर्थ है और जो साधारण है उसमें उन्नति नहीं है, बस इतना है। टीपी टाइम पास बैठे हैं, एक शिकारी है उसको आदत है जब भी कुछ बोलने लगता है ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची बातें करता है, उसका मित्र आके कहता है कि तुम बहुत ज्यादा फेंकते हो, थोड़ा कम फेंका करो। वो कहता है ठीक है, अगली बार जब भी मैं ऐसा कुछ करूँ उसको फील होता है मुझे सुधरना चाहिए। कि मैं थोड़ा ज्यादा ही, जब भी मैं कुछ कहूँ तो तुम ना ऐसे खांसना तो मुझे इशारा मिल जाएगा। तो फिर से मित्रों की सभा आती है, बैठते हैं सारे, तो ये अपनी कहानी चालू। अभी परसों की ही बात है, मैं जंगल में था, अकेला था, और एक 50 फीट का शेर सामने आ गया। वो मित्र खासता वो कहता है 50 फीट का तो पहले लगा, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो 40 फीट का था। फिर वो वापस हंसता परंतु जब मैंने बंदूक ली और मारने के लगा तो वो 30 फीट का था। फिर से हंसता तो फिर तय पर मैंने जब मार दिया और नजदीक जाके देखा वो तो 20 फीट का था। फिर से वो खांसता है उसका मित्र तो कहता है पर मैंने जब टेप से नापा तो 15 ही फीट का निकला। मित्र फिर खांसता है, बोलते बस अब 1 फीट भी कम नहीं करूंगा, बहुत हो गया। शराफत की भी कुछ चीज होती है, शराफत भी कुछ नाम खांसे ही जा रहे हो, कितना कम करूं। तो इसे क्या कहते हैं, बातें हैं, इसमें किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई शारीरिक कुकर्म नहीं हो रहा है, किसी के प्रति कोई निंदा नहीं हो रही है, कोई ग्लानी नहीं हो रही है। पर जो कर रहा है उसके लिए जोक नहीं है, हमारे लिए है। तो बाबा ने कहा क्या मापदंड क्या है, चेकिंग, सुबह से लेके अमृत वेले से लेके रात तक चेक करो, सुकर्म विकर्म, श्रेष्ठ कर्म है कुकर्म है, साधारण कर्म व्यर्थ कर्म निगेटिव कर्म क्या है। मुरली में 5-4 उदाहरण दिए हैं, पहला जो रॉयल कुल के होते हैं वो क्या करते हैं, रॉयल कुल वालों का क्या उदाहरण है, साधारण चलन नहीं होती है, नीचे चीज गिर गई तो उठाएंगे नहीं, कोई बेचने आएगा तो खुद जाके देखेंगे नहीं, ना ही मोल भाव नहीं करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे, कोई किसी ने कोई गिफ्ट दी खुद नहीं लगेंगे, दे रखो। तो ये सब रॉयल कुल की जो आत्मा है उनके लक्षण, एक तो वैसे तुम भी। दूसरा उदाहरण दिया है वैष्णव का, वो भी कुछ भी खा लेते क्या, तामसिक चीजें ना, छूते भी नहीं, इवन राजाओं का उदाहरण देते, पहले राजा डायरेक्ट नहीं खाते, पहले वो कुछ लोग अपॉइंटेड होते हैं किचन में, पहले वो खाएंगे चखेंगे और फिर राजा, ये भी यहां पर भी ऐसा। तीसरा उदाहरण दिया जिज्ञासु, तो जिज्ञासुओं को हम डायरेक्शन देते हैं, निषेध कर्म, निषिद्ध कर्म जिसको कहते हैं, निषिद्ध है ये, फॉरबिडन नॉट अलाउड, फॉरबिडन अर्थात बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये करना ही नहीं है बिल्कुल, अगर ये किया तो आउटकास्ट, फतवा, फरमान बिल्कुल नहीं कर सकते यहाँ। बाकी छोटी छोटी चीजें अलाउड है। बाइबल में लिखा है 10 कार्डिनल सिंस, कार्डिनल अर्थात बहुत बड़े पाप, और फिर है मिनियल सिंस, मिनियल सिंस अर्थात छोटे छोटे, छोटे छोटे पाप, मिनियल सिंस, कार्डिनल सिंस। कुछ कुछ चीजें ठीक है, झूठ बोल दिया ये सब ठीक है, माफ कर दिया, परंतु विकर्म, कुकर्म, उनके लिए कोई माफी नहीं है। ऐसी ऐसी बात है। तो ये तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण तोते का, क्या है कहानी? नलके के ऊपर बैठ के क्या कहता है? क्या क्या नल के ऊपर नहीं बैठा, और बैठा कहाँ है? नल के ऊपर। इसमें उसका वर्णन नहीं है, परंतु ये साकार मूल्यों में आते रहता है। साधु है जिसके पास बहुत सारे तोते हैं, और सब तोतों को उसने गीत सिखाया है। गीत कौन सा है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर हम जाएंगे नहीं, पर हम फंसेंगे नहीं। दाना डालेगा, पर हम फंसेंगे नहीं। तो साधु है, कुटिया है, झाड़ है, तोते हैं। साधु एक दिन चला गया, शिकारी ने देखा अवसर अच्छा है, अपना जाल डालता हूं। पर शिकारी जब गया और देखा कि ये तोते तो बहुत ही प्रशिक्षित तोते, हाईली ट्रेन्ड, एजुकेटेड तोते, इनको पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक साथ गा रहे। शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, परंतु हम फंसेंगे नहीं। शिकारी सोचता है चलो ठीक है, एक दो मूर्ख तो हो गई जो फंस जाएगा, जाल डाल देता है और सो जाता है। और जब सो के उठता है तो क्या देखता है? सब के सब तोते फंस गए। परंतु आश्चर्य की बात और एक है, फंसे हुए पर गाना कौन सा गा रहे? शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा, परंतु हम फंसेंगे नहीं। और फंसे हुए सब है, मैकेनिकल चिल्लाते हैं, कहते हैं विकर्म नहीं करो, पाप नहीं करो, परंतु व्यर्थ में नहीं जाओ, बीती को चिंतन मत करो, परंतु कर तभी रहे। मैकेनिकल रीडिंग, तोता रटन, पढ़ लिया है, रट लिया है, पर समझा नहीं है जैसा सिखाया। वैसे बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी पिताजी मुझे बताओ, पिताजी अखबार पढ़ रहे, ये डिस्टर्ब करता है बीच बीच में आके। वो कहता है भगवान ने आकाश क्यों बनाया, छत क्यों नहीं बनाई ऊपर? पिताजी इरिटेट होते हैं, कहते मुझे पढ़ने दो, नहीं कहते मुझे बताओ। वो कहता है कि अगर ना छत होती ना छप्पर होता तो ऊपर से भूत प्रेत टपकते, और फिर तुम बच्चों को तंग करते जाओ, अब पढ़ने दो मुझे। बच्चा कहता है अगर भूत प्रेत आकाश की वजह से नहीं टपकते तो हमारे मास्टर जी कहां से आ गए? भूत प्रेत की कहानी सुनाते, तो तीन उदाहरण, रॉयल बच्चे, रॉयल फैमिली वाले, वैष्णव और जिज्ञासु। अपने लिए निश्चित करना है कि निषिद्ध कर्म कौन से है, बिल्कुल करना ही नहीं है ये, बैंड, सेंसर्ड, स्टॉप, फॉरबिडन। ये किया तो दुख निश्चित है, पक्का है एकदम। तो आज की ये मुरली है, और इस मुरली से काम, सबसे पहला काम है स्पॉट द वेस्ट गेम। क्या गेम है ये? इस गेम में ग्रुप में आपको वो दिया जाएगा, एक उदाहरण, एक सिनेरियो दिया जाएगा, एक सीन दिया जाएगा, उसमें एक स्थिति है, ऐसी चार स्थितियां दी जाएगी, उसमें आपको लिखना है क्या परिवर्तन करना है। पहली स्थिति का उत्तर हम दे रहे, जैसे हम किसी का इंतजार कर रहे और वो लेट हो गया तो हमारे मन में विचार चलने लगता है ये हमेशा ही लेट होता है, और मन में शिकायत भर जाती है, व्यर्थ विचार। सशक्त परिवर्तन क्या करेंगे? यह समय आत्मचिंतन या दूसरों को शुभकामनाएं देने का है, चलो इस समय का उपयोग अच्छे विचारों और बाबा की याद के लिए करते हैं, यह है परिवर्तन। उसी तरह से दूसरे नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना, परिस्थिति। एक सहकर्मी जो है आपके काम की आलोचना करता है, आपको कहता है, और हम क्या सोचने लगते हैं, हमेशा मेरे काम में गलतियां ही निकलता है, मैं क्यों प्रयास करूं, फिर छोड़ो। व्यर्थ विचार, आलोचना या निराशा या चिढ़ जाना। सशक्त परिवर्तन क्या करना है, ये आपको लिखना है। इस परिस्थिति कोई आया और वह निंदा कर रहा है, हमें क्या परिवर्तन करना है। अगला, अनावश्यक गपशप। सहकर्मी जो आपके सारे बैठ के किसी के बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं भी प्रेरित होते हूँ कि उनके साथ बैठ के थोड़ा मैं भी अपना दो तीन अनुभव सुनाऊं, अनुभव की लेन देन। और सशक्त परिवर्तन इसमें क्या करेंगे। अगला है अभिभूत। इतना काम सब मुझे ही करना पड़ता है, घबराहट होती है, क्या परिवर्तन करोगे, संकल्प। अगला, टाल मटोल करना। जो काम मुझे आज करना है आपको लगता है मैं बाद में कर लूं, तो उसमें क्या परिवर्तन लाएंगे। ये हो गए चार परिस्थितियां। और दूसरा आज का होमवर्क है एलिवेटेड स्पीच। 30 सेकेंड का या एक मिनट का स्पीच तैयार करना है, परंतु वो स्पीच कैसा हो, बहुत पावरफुल शब्द हो, जिसमें कई तो शुभकामनाएं हो, शुभ भावनाएं हो, इस तरह वाला वो स्पीच हो। उसका विषय या तो प्रेरणा हो सकता है, दृष्टिकोण, शुभ भावना। उदाहरण, मैं सभी आत्माओं को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका हर दिन नई ऊर्जा और शक्ति से भरा हुआ। इस तरह के 3-4 लाइन हो, जो केवल 30 सेकेंड में अपना ही ऑडियो रिकॉर्ड करना है। बहुत पावरफुल स्पीच, कितना सेकेंड का, 30 सेकेंड या तो एक मिनट। एक मिनट ज्यादा हो गया, 30 सेकेंड काफी है, जिसमें 3-4 लाइनें आ जाएगी। वो समान हो सकता है, शुभ भावना शुभकामनाएं हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की मुरली। तो व्यर्थ, विकर्म और विकर्मों की भी लिस्ट है, कुकर्मों की भी लिस्ट है, वो अभी टाइम कम है, नहीं तो इसको बाद में सुनाएंगे कि ब्राह्मण जीवन में विकर्म कौन से है और ब्राह्मण जीवन में कुकर्मों की क्या परिभाषा है। उदाहरण, एक उदाहरण यहां दे रहे, गॉसिप करना, ये सब जो है मलाइन करना किसी को डेलिबरेटली, वो कुकर्म है। और फिर अटैचमेंट, ये कल डिस्कस करेंगे या कभी बाद में। ओम शांति।
शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महि। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिव वंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति।
प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
ताज धारी तिलक धारी निर्विकारी क्रांतिकारी,
ताज धारी तिलक धारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति,
हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, शिव शक्ति योगेश्वरी,
तुम शिव शक्ति योगेश्वरी,
शक्ति।